ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। हमारी श्रृंखला चल रही है माइंड मैटर्स। अभी तक ये समझ में आया है कि जब हम माइंड पर ध्यान देते हैं, जबकि अपने मन पर ध्यान देते हैं, तो बाकी सारी चीज़ों पर भी हम उतना ही ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये बिठा लिया था कि बाकी सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और मन तो जैसा है क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन कम से कम यहाँ तक हमें बात समझ में आई है कि मन पर भी हम कंट्रोल नहीं तो हम मन को समझ सकते हैं, क्योंकि जब मन को समझ लेंगे तो बाकी सारी शायद प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। इस श्रृंखला में आगे बात करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं विश्व प्रख्यात साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति।
डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इस श्रृंखला में हम क्या कुछ शामिल करने वाले हैं, ताकि वो लोग भी तैयार हों जो जानना चाहते हैं, और किस तरह से हम इनको इसको आगे लेकर चलेंगे।
देखिए, जीवन में कोई भी काम करना है और जितने भी लोगों ने जीवन में कुछ पाया है, आगे बढ़े हैं, असल में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन को काबू करके रखा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हम बाहरी रूप से अपने जीवन में पा रहे हैं या विश्व को दे रहे हैं, वो अपने मन के द्वारा ही दे रहे हैं। जो माइंड की पावर्स हैं, चाहे वो समझने की है, एनालाइज करने की है, उसमें क्रिएटिविटी लाने की है, दो चीज़ों को इकट्ठा समावेश करने की है, वो सब मन की पावर्स हैं। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये समझ लिया कि अगर हम अपने मन का समझकर या बिना समझे पूरा ध्यान रखेंगे तो उनको बहुत आगे ले जाएगा। जब हम उसे नहीं समझते या उसे खुला छोड़ देते हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, जो बाहरी तनाव है उनको झेलना चाहता है, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़कर, और वो भी एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज आप नॉर्मल हैं कल आप एबनॉर्मल हो जाएंगे, तो वो भी एक प्रोसेस है और धीरे धीरे इंसान उस तरफ जाता है। लेकिन जब उस रेड बैंड में, समझ लीजिए, एंटर कर जाता है, जहाँ पे कि एक इशू, प्रॉब्लम इलनेस बननी शुरू हो जाती है, तो वो शुरुआत होती है बचपन से। बचपन में 8-10% बच्चों को, चाहे अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ADHD जिसको आमतौर पे बोला जाता है, या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, कंडक्ट प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, स्कूल में पेरेंट्स के साथ या आसपास के बच्चों के साथ उनका तालमेल सही नहीं बैठ पाता, या वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिसमें कि स्कूल का या जो वहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा है, एक कंपटीशन है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। परिवार जो थोड़े से टूटते जा रहे हैं, या सिंगल पेरेंट्स कई बार होते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन 8-10% बच्चों में ऐसा देखा जाता है। उसके बाद जब हम एडोलेसेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे सही रूप से रिलेशनशिप ना बन पाना अपने आसपास के माहौल के साथ, पेयर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, ये बहुत एक बड़ी समस्या के रूप में अब सामने आ रहा है, और उसकी वजह से कई बार उनके संबंध जो हैं वो बड़े ख़राब से हो जाते हैं, या कई बार उनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें सेक्स की एक्सपेरिमेंटेशन या ड्रग्स की या अल्कोहल की या टबैको की एक्सपेरिमेंटेशन वो शुरू हो जाती है। इसी उम्र में स्लीप की रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट 1/3 लोगों में आजकल स्लीप से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस,
खासकर ये जो ये वर्ग है, जो यूथ की बात आप कर रहे हैं,
जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है या जहाँ पे उनको लगता है कि बहुत कुछ करने को है जीवन में, तो नींद की ज्यादा जरूरत है नहीं, उसके बारे में भी एक बात करने की जरूरत है। या फिर थोड़े और बड़े होने पर जो आपसी संबंध है, मैन वुमेन रिलेशनशिप, पति पत्नी में या अदरवाइज पार्टनर्स में, वहाँ पे, या जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, एक कॉम्पिटिशन भी है, ईर्ष्या भी है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी है, या सिर्फ सिंगल माइंडेड फोकस वर्क है और उसकी वजह से बर्नआउट्स हो जाते हैं, या जो समाज में और तरह के तनाव हैं, ख़ास तौर पे विमेन से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि समाज में विमेन को दूसरे लोगों के मुकाबले में, मेल्स के मुकाबले में, कई तरह की प्रॉब्लम्स का ज़्यादा सामना करना पड़ता है अपने परिवारों में भी, चाहे वो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे वो उनके खिलाफ वायलेंस हो, फैमिलीज के अंदर ही, और फिर अगर हम वृद्धावस्था की बात करें, एल्डरली में देखा गया है कि स्ट्रेस रिलेटेड या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यूज हैं, एंड देन स्पेसिफिक इलनेस, एंग्जाइटी, फोबियाज, पैनिक अटैक्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एडिक्शंस, इन सब चीजों की एक एक करके इस कड़ी में बात करेंगे। और
तो ये आपने कहा कि रेड जोन में आ चुके हैं,
ये रेड जोन में आ चुके हैं,
ये चीजें जो
ये इलनेसेस बन चुकी हैं। एक चौथाई परिवारों में इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके एक सदस्य को है, या करीबन एक चौथाई पॉपुलेशन को इस तरह की साइकोलॉजिकल इनपुट्स की और स्पिरिचुअल इनपुट्स की, जिससे कि वो अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को संभाल सके, या मेडिकल मदद की जरूरत है, स्पेशली जब वो एक इलनेस के रूप में कन्वर्ट हो गया।
जैसा कि बार बार हमारे सामने बात आ रही है कि हर चार में से एक जो है वो उस रेड जोन में है,
उस रेड जोन में अभी नहीं पहुंचा है
लेकिन पहुंचने
वाला है।
तो वो ये तादाद बहुत बड़ी है, और आज के 10 साल पहले तक इतनी नहीं थी, मतलब जो अगर आंकड़े देखते हैं। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग?
इट्स लाइक वी डोंट नो आवर डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एनीमोर। यू नो, अगर मुझे अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ना पता हो कि ये नॉर्मल है, सो आई शुड नो कि ये नॉर्मल है, जैसे ही उससे थोड़ा बढ़ा आई शुड नो कि आई हैव टू टेक केयर। लेकिन अगर 99 हुआ एंड आई सेड इट्स ओके, फिर 100 हुआ एंड आई सेड इट्स ओके, 101 हुआ, 102, देन आई एम नियरिंग दैट रेड जोन। लेकिन इफ आई न्यू कि दिस इज नॉर्मल, एंड अगर 99 भी हुआ तो आई सेड रेस्ट, चलो और दवाई नहीं तो रेस्ट कम से कम, क्योंकि नॉर्मल से आई हैव मूव्ड अ लिटिल अहेड, विच मीन्स द बॉडी इज गिविंग सम सिग्नल, तो रेस्ट करो। अगर 100 हुआ तो आई सेड एक दवाई ले लो, ताकि वो जल्दी 2 दिन में ही आ जाता। लेकिन हम तो 103, 104 एंड कहाँ पहुँच गए, एंड आज हम किस लेवल पर पहुँचे कि वो 102, 103 को ही हमने नॉर्मल कह दिया।
वो हम रेड जोन पे कब पहुंचे, हमें अवेयरनेस में ही नहीं
आया। इवन अगर हम वो रेड जोन पे नहीं है, क्योंकि रेड जोन वुड बी द इलनेस, इमोशनल, मेंटल, बट इवन इफ वी आर नियरिंग इट, लेट्स से 105 इज द रेड जोन, बट हम आज 103, 104 बॉडी टेम्परेचर पे चल रहे हैं, एंड मोस्ट रिस्क इज कि हमने उसको नॉर्मल कह दिया।
ये तो है ही।
हाँ, अब जब हमें स्पिरिचुअली समझ में आता है कि आत्मा का नॉर्मल है पीस, एंड हमने आज एंगर को नॉर्मल कह दिया, सी, सो वी शिफ्टेड आर डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। तो इट्स लाइक बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है ये, लेकिन हमने 102 को अगर नॉर्मल कह दिया तो हम उसको नॉर्मल बोल के अपना सारा काम कर रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, दवाई नहीं दे रहे, तो वो कब तक चलेगी? देन इट विल गो ना 103, 104, 105। सिमिलरली स्पिरिचुअली भी यही हुआ, जिसको हम स्पिरिचुअली कहें या मेंटली कहें, कि हमारा नॉर्मल संस्कार था पीस, हैप्पीनेस, हमारा नॉर्मल संस्कार था केयरिंग, कोऑपरेशन, एम्पैथी, लव, दिस वाज आवर नॉर्मल
गिविंग, यू नो, वी वर द गिविंग बीइंग।
अगर बहुत थोड़ा पीछे जाएं, हम कहते हैं हम देवी देवताओं की वंशावली के हैं, मतलब हम कहते हैं ना हमारी कुल देवी, वो हमारे पूर्वज थे, तो देवी देवता मीन्स सिर्फ जो देते हैं, राइट? तो वो देने वाले हम थे, और मनुष्य आत्मा की नेचर ही देना है। तो अगर हम इस सृष्टि चक्र को जब देखते हैं उस बड़े पर्सपेक्टिव से, कि सत्युग मतलब देवी देवता, देवी देवता मतलब जो देते हैं, सो वो हमारा नॉर्मल था कि आत्मा भरपूर और सिर्फ देती है, और क्या देती है, अपनी क्वालिटीज को देती भी कुछ नहीं है, रेडिएट ही करती है। एंड कलयुग मीन्स हम सिर्फ लेते हैं, प्यार दो, खुशी दो, शांति दो, सो वी शिफ्टेड फ्रॉम आर नॉर्मल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी डोंट नो दैट वी शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन जिस स्थिति में आज हम हैं, हमने उसको नॉर्मल कह दिया। आज हम सिर्फ ले नहीं रहे, मांग नहीं रहे, हम तो लिटरली छीन लेंगे, वी हैव रीच्ड दैट, तो वी हैव शिफ्टेड बिग स्पेक्ट्रम फ्रॉम देने टू छीनना, एंड इसको नॉर्मल कह दिया। आज किसी से भी पूछो, स्ट्रेस नॉर्मल, गुस्सा नॉर्मल, हर्ट होना नॉर्मल, रिजेक्टेड फील होना नॉर्मल, आज तो कहेंगे डिप्रेसिव फील हो रहा है नॉर्मल, तो मतलब 103 टेम्परेचर को नॉर्मल बोल दिया, तो वी वॉन्ट नो दैट वी आर हेडिंग नियर द रेड जोन, तो वी आर नॉट अवेयर। आज तो हम हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ कहते हैं नॉर्मल, आजकल नॉर्मल, डायबिटीज हो रहा है नॉर्मल है ना, अभी क्या करेंगे. किसी का डिवोर्स भी हुआ विल से नॉर्मल है, आजकल होता है. तो नॉर्मल की डेफिनेशन हैज़ चेंज्ड, दैट एवरीथिंग विच इज़ एक्चुअली अनहेल्दी फॉर अस उसको हमने नॉर्मल कह दिया. एंड जो हमारा नॉर्मल था उसको हमने कहा रेयर. शांति कब, तो उसके लिए हम कभी हॉलीडे पे साल में एक बार पहाड़ पे जाएंगे तो वो शांति, या किसी तीर्थ स्थान पर जाएंगे. तो पूरी इक्वेशन शिफ्ट हो गई. अब अगर हम इतना भी रियलाइज करें कि ये जिन चीज़ों को हमने नॉर्मल कहा वो इज़ फीवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू रीच दैट रेड बैंड 105, तो आई जस्ट हैव टू गो टू माई नॉर्मल नाउ. इसलिए स्पिरिचुअल इनपुट कितनी इम्पोर्टेंट थी. उसने हमें सबसे पहले नॉर्मल की डेफिनेशन बताई कि चाहे आपके चारों तरफ सब आपको कहें कि गुस्सा करना नॉर्मल है, चाहे आपको चारों तरफ दिखे भी कि सब गुस्सा कर रहे हैं, होल्ड ऑन टू योर डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड वर्क ऑन अचीविंग इट. इवन अगर मेरे अंदर वो गुस्से का संस्कार है, आई नीड टू नो कि ये नॉर्मल नहीं एंड आई विल वर्क. सो देन व्हाट विल हैपन, मैं वो 103 जहाँ पहुँच गए, now we'll go backwards and we will go to 102, 101, 100. But if now also we don't take care, toh phir hum 103 se 4, 5 and then we will go into the red band.
Actually, aapne jo spiritually kaha, psychologically bhi wahi sahi hai. Kyunki jab hum koi normalcy ki baat karte hain, tabhi hum abnormalcy ki kar sakte hain. So there is a band which is normal aur aap us band se dur hain, toh you are away from normal. और अगर बहुत दूर है देन यू आर एबनॉर्मल. उस नॉर्मेलसी की डेफिनेशन में दो चीज़ें ली जाती हैं. एक व्हाट इज कॉल्ड एज द मीडियन, मतलब एक पॉपुलेशन में अगर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस तरह के बिहेवियर में हों, जिस तरह का जीवन जीते हों, उसको नॉर्मल समझा जाता है. जो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है वो थोड़ी परसेंटेज है. एक तो वो डेफिनेशन है, लेकिन साथ ही एक दूसरी डायमेंशन ये भी है कि जो चीज़ें सकारात्मक हैं बॉडी के लिए भी माइंड के लिए भी, उनको नॉर्मल समझा जाए. जो नेगेटिव हैं, जो असर डाल रही हैं और पता है कि गलत असर डाल रही हैं, चाहे वो ज़्यादा लोग भी कर रहे हैं, तब भी उसे ना नॉर्मल समझा जाए. अनफॉर्चुनेटली समय के साथ साथ मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, अगर मेजॉरिटी लोग परेशान हैं तो कहा जाता है अच्छा इसको तो संभाल नहीं सकते, चलो इसको ही नॉर्मल सी मान लेते हैं. जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर 25% लोगों का कहते हैं इस समय में बढ़ा हुआ है, तो उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती थी. कहा जाता है इसी के साथ जी लो. बट दैट इज नॉट गुड इन द लॉन्ग रन. जब भी कोई इमोशन होता है या थॉट होता है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं. इट इज़ अ साइकिल. अगर कॉन्शियसनेस में यानी सोल में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई तो वो पहले थॉट में रिफ्लेक्ट होगी, उससे रिलेटेड एक नेगेटिव थॉट आएगा, और जैसे ही थॉट आएगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस का जो पूरे का पूरा शरीर में और मन में संचार है वो आ जाएगा. और उसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में एक नेगेटिव लहर फैलेगी. इसको हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोलते हैं.
ओके.
और कुछ देर के बाद अगर हमारे मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी. इसमें एक सिस्टम होता है ब्रेक्स का, एक सिस्टम होता है एक्सेलरेटर का. तो अगर हमारा शरीर हमेशा एक्सेलरेटर मोड पे रहे, जिसको हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और वो रिलैक्स करे ही नहीं, तो शरीर जैसे कि हायर पावर यूज़ कर रहा है, गाड़ी खड़ी हुई है, पेट्रोल जल रहा है, जा कहीं नहीं रही है. तो उस वजह से फिर कई तरह की इलनेसेस, फिजिकल इलनेसेस, साइकोसोमेटिक इलनेसेस होनी शुरू हो जाती हैं. और क्योंकि मन पे बहुत देर तक उस चीज़ का नेगेटिव असर रहा है, तो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स एंड देन नेगेटिव एक्शंस और नेगेटिव बिहेवियर्स, यानी उसको कम करने के लिए किसी ने ड्रिंक्स का या तंबाकू का या पेन किलर्स का या स्लीपिंग पिल्स का सहारा लिया, या वही गुस्सा बाहर दूसरों पे निकला, वो एक साइकिल बनेगा. मैंने आज किसी को डांटा, उसके मन में एटलीस्ट मेरे लिए कुछ नेगेटिव भाव चलेगा और वही चीज़ें फिर संबंध में आएंगी. तो एक साइकिल है जो अगर नेगेटिव से शुरू होता है वो व्यक्ति में, परिवार में, फैमिली में, समाज में पूरे का पूरा चलता है। अगर पॉजिटिव साइकिल शुरू होता है तो वो राइट फ्रॉम योर थॉट्स टू योर इमोशंस करके एक वो पॉजिटिव साइकिल लेता है। तो नॉर्मलसी की डेफिनेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि वो स्थिति जिसमें मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ।
अब वो कंफर्ट लेवल भी तो, कंफर्ट जोन्स भी तो हमने अपने अपने बना लिए हैं,
उसमें बहुत क्लियर है। अगर हम कुछ समय के लिए अपने अंदर से कनेक्ट करें और देखें कि किस समय मुझे खुशी प्राप्त हुई, मुझे पीस मिला, मुझे एक पॉजिटिव सेंस ऑफ वेलबींग मिली। लोगों से कई बार कहें कि आप याद करो तो कहते हैं हाँ, 2 साल पहले मैं एक पहाड़ पे गया था, वहां पे मुझे 5 मिनट के लिए बहुत शांति मिली, उसके बाद 2 साल तक आपने कुछ नहीं महसूस किया
क्योंकि बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा था।
पर अगर इतना कम हुआ है, दैट मीन्स कि आप इतने ज्यादा नेगेटिव के साथ जी रहे हो, तो वो 5 मिनट या 1 दिन आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं देगा। सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बिकम अ नेचुरल प्रोसेस, एंड अगेन दैट नेचुरल प्रोसेस इज देयर विद इन अस। उसकी भी हमारे अंदर पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग माइंडली हो रखी है, हम सिर्फ उस प्रोग्रामिंग को कुछ देर के लिए भूल गए।
अगेन अंडरस्टैंडिंग इन रियलिटी व्हाट इज द रियल, मतलब किस चीज को मैं खुशी मानूं, क्या मतलब है पीस का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन सारे एस्पेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस को भी भूल चुके हैं।
खुशी हम किसको डिफाइन करेंगे? खुशी वो किसी इवेंट के लिए वेट नहीं करनी है, कोई मार्क्स के लिए वेट नहीं करनी है, किसी प्रमोशन के लिए वेट नहीं करनी है। खुशी मीन्स, शांति मीन्स, इन वेरी ले मैन नॉर्मल, जब आपका मन हलचल में नहीं है, किसी भी हलचल में नहीं है, विच मीन्स आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बहुत दर्द वाला नहीं सोच रहे, लाइक चिंता वाला नहीं सोच रहे कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये वैसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं, सपोज आई एम जस्ट लीडिंग माई नॉर्मल लाइफ, सुबह उठे, तैयार हुए, ड्राइव किया, काम पे गए, ये सब शांति और खुशी से हो सकता था। खुशी इज़ नॉट गोना कम वंस इन अ वाइल, शांति भी ना, ये नॉर्मल डे पे। लेकिन ये सब करते हुए सुबह उठे, ये क्यों नहीं हुआ, इसने किया या नहीं, उसने किया, ये जब ज़्यादा चलने लगा, तब हम अपनी नॉर्मल थिंकिंग की स्पीड से हटे हुए थे। फिर जब हम काम पे गए, अगर हमारी थॉट्स होती कि मैं इसको कैसे हेल्प करूं, इनको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, अच्छा जो मेरे पास ये है मैं इनको दे देती हूँ, ये जितना हम करते, वी वुड हैव फेल्ट नाइस, क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया, सामने वाले ने आपको दुआएँ दी, तो इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू क्रिएट अ नाइस फीलिंग इन यू। लेकिन आज हम काम पे गए और हमारी थिंकिंग अलग थी, हमने कहा इसको मेरे से ज़्यादा क्यों मिला, अच्छा मैं पहुँच पाऊँगा कि नहीं वहाँ तक, मेरे से पहले ये पहुँच पाया या नहीं, तो हमारी पूरी थिंकिंग जब ऐसी वाली हो गई, ये थिंकिंग हमें डिसकम्फर्ट फीलिंग क्रिएट करती है, ये थिंकिंग हमारे अंदर अलग तरह के केमिकल्स क्रिएट करती है, ये थिंकिंग हमारी बॉडी पे एक अलग इफेक्ट लाती है। एंड वो वाली जो थिंकिंग थी कि मैं कैसे सबकी हेल्प करूँ, मैं, अच्छा इसने गलती कर दी, कोई बात नहीं, अगली बार ठीक कर देगा, क्षमा करो, बात को भूलो, ये थिंकिंग हमारे लिए कम्फर्टेबल थिंकिंग थी। सो वी कैन डू इट एंड चेक इट इवन नाउ। आपके साथ किसी ने कुछ किया, अगर आपने उस बात को पकड़ के रखा और फिर उसके ऊपर एक हेट्रेड या उस तरह की थिंकिंग, ये आपको दिख जाएगा कि ये दुख है, ये अशांति है, ये तनाव है। और यही अगर आपने कहा इट्स ओके, कोई रीज़न होगा या मेरा ही कोई इसके साथ हिसाब किताब होगा, आई फॉरगिव, फुल स्टॉप, ये आपकी थिंकिंग को किस लेवल पर लेके जाती है, आप इंटरनली माइंड वाइज कैसा फील करते हैं, लाइट, आपकी बॉडी कैसे फील करती है, लाइट, ये दिख रहा है, तो ये इस पूरी कैटेगरी को आप खुशी बोल सकते हैं, शांति बोल सकते हैं, मतलब इट्स द कंफर्टेबल साइड,
स्टेबलाइज,
या इट्स द कंफर्टेबल साइड, एंड दिस इज द अनकंफर्टेबल साइड। अनकंफर्टेबल आई कुड बी बिकॉज ऑफ जेलेसी, आई कुड बी बिकॉज समबडी एल्स रिजेक्टेड मी और व्हाटएवर, बट दैट्स एन अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, एंड वो हमें हर एक को पता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं ये पता होगा कि कब मैं कंफर्टेबल हूँ, कब मैं अनकंफर्टेबल हूँ। सिर्फ होता ये है कि कई बार बहुत ज़्यादा समय अनकंफर्टेबल रहते रहते हमें अनकंफर्टेबल रहने की आदत पड़ जाती
है।
अगर मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो मुझे पता है कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ या मैं अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, अनकंफर्टेबल हूँ कि ये नहीं है मेरे लिए ठीक, बट मुझे लगता है मुझे ऐसे ही बैठना होगा बिकॉज आई डोंट हैव अनदर चेयर, मुझे ऐसे ही बैठना है, तो मैं वो दर्द में भी डिसकम्फर्ट में भी अपने आप को अडेप्ट करके उस डिसकम्फर्ट को एक्सेप्ट करके जीवन में चलना शुरू कर देती हूँ. लेकिन अनकम्फर्टेबल पोस्चर से बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो फिर वो रेड वाले बैंड में चले ही जाएंगे. तो अगर आज हम अपनी उतनी भी चेकिंग करें कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेट मी फर्स्ट सी दैट, तो मेरी अपनी थॉट किस क्वालिटी की है वो सिर्फ मुझे ही पता है, तो वो मुझे देखना है कि ये अनकम्फर्टेबल है. इवन इफ आई हैव बीन लाइक दैट फॉर इयर्स, यू नो वी मीट सम पीपल हु से मुझे तो बचपन से रिजेक्ट किया गया, फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे रिजेक्ट किया, आज मेरे बच्चे भी मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको रिजेक्टेड फील होने की भी एक आदत ही पड़ जाती है. लेकिन वो हैप्पी तो नहीं है उसके साथ, बट दैट वी डिडंट नो कि हम वो अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं या करना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे जीवन के और बहुत एस्पेक्ट्स पर असर डालेगा. हमने सोचा दे आर रिजेक्टिंग मी, तो वट कैन आई डू अबाउट इट, पहले मुझे पेरेंट्स ही ऐसे मिले, फिर हस्बैंड ऐसा मिला, तो मेरे तो आई हैव टू लिव लाइक दैट विद रिजेक्शन. फिर हमें अनअवेयर वो फिजिकल बीमारियाँ भी होती गई एंड कई बार फिर मेंटल इलनेस भी होती गई. दैट्स समथिंग आई थिंक हम चेक कर सकते हैं कि क्या मैं खुश हूँ या नहीं हूँ विदाउट एन इवेंट. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आई डोंट नीड टू बी अनहैप्पी ओनली विद एन इवेंट, आई कुड बी अनहैप्पी विदाउट एन इवेंट एंड सिमिलरली आई कुड बी हैप्पी विदाउट एन इवेंट. हमें एक्चुअली नॉर्मल वाले दिन पर देखना चाहिए ज़्यादा, कि नॉर्मल मतलब जब कुछ ना बड़ा ऐसे वाला हुआ है और ना ऐसे वाला हुआ, नॉर्मल हाउ डू आई फील ऑन अ डेली रूटीन डे, फिर उसको हम दूसरे वाले टाइम पे भी देख सकेंगे कि जब अगर हम नॉर्मल दिन पर जहाँ कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया हम स्टेबल रहे, तो अगर कोई जीवन में बड़ी बात आ भी जाती है हम तब स्टेबल रहने की हमारे पास पावर है. लेकिन एक आम दिन पर ही अगर हम इतना फ्लक्चुएट हुए, फिर अगर कोई बात आ जाएगी तो वी डोंट हैव द पावर टू फेस,
अननेसेसरली कुछ भी आता रहता है
वहां पे. सिर्फ एक जो बात समाज में अभी हो रही है कि बहुत सारे लोगों को वो पीरियड चाहे जितने भी ब्रीफ हो ऑफ पॉजिटिविटी या नॉर्मलसी महसूस करने के तरीके समझना या महसूस करना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. चाहे वो एक बच्चे को, क्योंकि घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्कूल में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, घर वाले वो प्रॉब्लम स्कूल की तरफ कर रहे हैं, या एक एडोलेसेंट है जिसको कि जो यही सीख रहा है कि हर समय मैं उस जो आपने एक्साइटेड स्टेट कही उसको ही नॉर्मल समझूं और उसी की तरह चलता रहूं, तो उन्हें कई बार ये भी नहीं पता लगता कि वो एबनॉर्मलसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं.
और फिर वो कहते हैं कि अगर वो नहीं है वो वाली स्टेट में बोर हो रहा हूँ
क्योंकि स्टिमुलेशन नहीं हो रही. लेकिन बिना स्टिमुलेशन के नॉर्मली जी पाना वो एक बहुत बड़ी बात है. एंड द अर्लीस्ट साइंस ऑफ स्ट्रेस, कुछ लोग ये कहते हैं कि स्ट्रेस होना ज़रूरी है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती. कई बार डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि थोड़ा सा तनाव ज़रूरी है.
पॉजिटिव स्ट्रेस जैसे क्या?
देखिए स्ट्रेस पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, स्ट्रेस होता. स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर वो हो रहे हैं तो वो ठीक नहीं है. शायद पॉजिटिव स्ट्रेस लोग कहते हैं वो मोटिवेशन को ही एक विकृत तरीके से एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के रूप में कहा जाता है कि मेरे में रोज़ उठकर कुछ करने की इच्छा हो और उसके लिए मैं एक पॉजिटिव तरीके से प्लान ऑफ एक्शन बनाऊं, लेकिन टेंशन में नहीं बनाऊं, भागा दौड़ी में नहीं बनाऊं, अपने हार्ट को तकलीफ दे के ना बनाऊं, लेकिन मुझे ज़िंदगी में बढ़ने की इच्छा हो विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस टू माई बॉडी और टू माई माइंड, वो एक मोटिवेशन है. पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं कह सकते. स्ट्रेस का मतलब ही है कि जब आपको अंदर से पता लगे कि आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे, और वो हम सबको पता लग जाता है. स्टूडेंट है वो ऐसे करके बैठा हुआ है टीचर के सामने क्योंकि वो टेंशन में है. आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है अगर आप किसी को मिलने वाले हैं, मुंह सूख जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, पूरी बॉडी एकदम तन जाती है, तो वो एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस हैं. और थोड़ी देर तक रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, बट ऑल दीज आर सिग्नल्स बाय द बॉडी कि अभी आप नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल की ओर जा रहे हैं, और अगर ज़्यादा देर तक अवे फ्रॉम नॉर्मल रह रहे हैं तो अब नॉर्मल की ओर जा रहे हैं, और वो अब नॉर्मल अगर रहेगा तो कुछ दिनों के बाद इलनेस की ओर जा रहे हैं। तो वो जो है उस चीज़ को समझ पाना, कम्युनिकेट कर पाना अगर ज़रूरत हो, या एटलीस्ट अपने आप को कम्युनिकेट कर पाना ताकि आप उसे ठीक कर सकें, वो एक फर्स्ट साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ओन नॉर्मलसी, वो बहुत ज़रूरी है।
बट ये भी जैसे आपने बताया कि हाथ पे और टाइट होना, ड्राई होना, ये तो सेकेंड स्टेज पे आ चुका है ऑलरेडी।
जी हाँ,
विच मीन्स वी ऑलरेडी क्रॉस द फर्स्ट स्टेज के स्ट्रेस माइंड के लेवल पे था, अब तो वो बॉडी के लेवल पे आ गया। सेकेंड स्टेज पे भी जब आ जाता है तो हमने इग्नोर कर दिया कि ठीक है ना, मुंह सूखा हुआ है, सूखा हुआ है, एंड देन वी विल से नॉर्मल है, लेक्चर देना है तो होगा ही, प्रेजेंटेशन देनी है,
हमने उससे मिलना है तो ऐसा होगा ही, यू नो, लाइक वी विल हैव बटरफ्लाइज।
अगर उस समय हम ये रियलाइज करें कि दिस इज स्ट्रेस, दिस इज डैमेजिंग मी देन माय बॉडी, लेट मी चेंज माय थॉट, मुझे किस बात का फियर हो रहा है, क्या डर लग रहा है मुझे प्रेजेंटेशन देने में, तो वो मेरी क्या थॉट है, मैं उसको किस थॉट से सब्स्टिट्यूट करूँ ताकि थॉट चेंज हो, फिर वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट मेरे जो शरीर पर पड़ रहा है वो भी चेंज हो, और फिर धीरे धीरे हम अवेयर होंगे कि शरीर पे आने से पहले ही असर, मन पे ही जब डर क्रिएट होने लग गया हम अवेयर हो जाएंगे कि ये क्रिएट हो गया है, मतलब 99 पे आ गया, तो क्यों ना हम इसको ही अभी रिवर्स कर दें। तो ये अवेयरनेस, दिस इज लिविंग इन द अवेयर मोड एंड द अदर इज लिविंग इन एन ऑटोमेटेड मोड, हो रहा है एंड इमीजिएटली उसकी जिम्मेवारी परिस्थिति पे डाल दी कि ये तो होना ही है,
और इसको इग्नोर करके परिस्थिति को सॉल्व करने के प्रोसेस में चले जाते हैं।
यू नो, जो शिवानी बहन ने कहा, देयर इज अ फ्रेज, द कॉन्शियसनेस दैट इज कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन कॉन्शियसनेस, यानी मेरी मन की स्थिति को पहचानने वाला मैं, एनर्जी, आत्मा, वो मेरे मन की स्थिति को देख पा रहा है, सो आई एम बिकमिंग अवेयर एट दैट लेवल कि वहां तक वो आए ही नहीं, उससे पहले ही मैं उसे साक्षी रूप में देख के रोक सकूं।
अगेन वी वुड ऑल लाइक टू रीच दैट स्टेज, और इट इज पॉसिबल, यू नो, लाइक हमने इसी मंच पर बहुत बार बात की है, तो इसके बारे में हम एक्चुअली और भी जानना चाहेंगे, बिकॉज अभी तो अवेयरनेस के स्टेज पर आए हैं कि कहीं ना कहीं हमने मन के साथ एक दुश्मनी या दूरी रखी हुई है, उस दूरी को पहले दूर करने के लिए अवेयरनेस पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर अवधेश शर्मा, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच आज की पूरी बातचीत के लिए।
ओम शांति।
ओम शांति।
8 to 10% चिल्ड्रन आर हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और इमोशनल disturbances. In adolescence, relationship with parents and peers create emotional issues. For adults, marital and work stress affects their mental health. Normal for every soul is peace, love, sharing, cooperation and compassion. When we shift from these to a nature of anger, hatred, competition and greed, we shift away from our mental health. Normal is not what the majority are doing. Normal is what is healthy and comfortable for us. Negativity in our consciousness gets reflected in our thoughts, and automatically a negative energy flows through the entire body. When this happens for long periods of time, it becomes the reason for psychosomatic illness. Happiness is not excitement or pleasure based on an event or achievement. Happiness means a stable response to situations and people where each thought is positive and comfortable for us.